श्रीमद् भागवतम 10/19/16 डेट 22 फरवरी 2015 स्पीकर आदि प्रभु
क्षण एक क्षण युग शतम 100 युग इव सदृश यासम जिनके लिए एन जिसके बिना बिना अभवत हो गया। ट्रांसलेशन इन पर्पट ही डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। गोविंद को घर आते देखकर तरुण गोपियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी संगति के बिना एक क्षण भी उन्हें 100 योगों के समान प्रतीत हो रहा था। तात्पर्य, ग्वाल वालों को दावाग्नि से बचाने के बाद कृष्ण ने अपने विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को बचाया। श्रीमती राधारानी आदि गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अतीब प्रेम है और उनसे एक क्षण का भी वियोग उनके लिए लाखों वर्षों के तुल्य बन जाता है। गोपियाँ कृष्ण की सबसे महान भक्त हैं और कृष्ण के साथ उनकी विशिष्ट लीलाएं अगले अध्याय में वर्णित है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत दावानल का निगला जाना शीर्षक 19वें अध्याय का श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञान सिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं ऋणवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता सखान्युतंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी गोपियों के हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है वो प्रेम को विशेष रूप से बता रहे हैं। स्वाभाविक बात है, भगवान के अंश होने के नाते प्रत्येक जीव का एक स्वभावगत गुण है भगवान को प्रेम करना। ये जीव का स्वभाव है भगवान को प्रेम करना, लेकिन कुछ विशेष होते हैं तो उनका प्रेम का बाहर नहीं जा पाते। ऐसे कुछ भक्त लोग विशेष होते हैं जिनका प्रेम को तोड़ करके भगवान नहीं जा पाते, आगे नहीं जा पाते। भगवान ऐसे भक्तों का प्रेम का अधीन हो जाते हैं। ऐसे भक्त कौन थे? गोपियाँ या श्रीमती राधा रानी। हाँ, ये ऐसे भक्त रहे इस संसार के भीतर, हाँ, तो उनके प्रेम में बंधन, प्रेम के बंधन में आकर भगवान कभी वृंदावन छोड़ते नहीं है, कभी भगवान वृंदावन को त्यागते नहीं है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर गोपियों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो कितना प्रेम थी, वो कैसे प्रेम थी, और प्रेम का जो गहरा है वो कहाँ तक थी, किसी को नहीं पता। फिर भी श्री सुखदेव गोस्वामी गोपियों का प्रेम को सर्वोच्च प्रेम के रूप में श्रीमद् भागवतम में कहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी ये बात को स्वीकार करते हैं कि गोपियों से बढ़कर के प्रेम ये संसार में मुझे और कोई नहीं कर सकते। ये बात को देखकर द्वारका के द्वारकावासी भी चकित रह जाते थे, ये गोपियां कैसे हमारा पति को इतने इस प्रकार का प्रेम कर पा रही है जो प्रेम हम नहीं कर पा रहे। द्वारका के जो लोग थे, अष्टपाठ रानियां जो भगवान के कि द्वारका के जो भक्त थे, तो बड़े ताजुब हो जाते थे ब्रजवासियों का प्रेम के सामने, कैसे उनका प्रेम का रस किस प्रकार का है और किस प्रकार का प्रेम कर रहे हैं ये लोग, जो प्रेम का वसीभूत होकर भगवान हमेशा हमारे पास होती हुई भी हमेशा ब्रज की ओर उनका ध्यान जाती है, वो प्रेम किस प्रकार का प्रेम थी। द्वारका तो छोड़िए, स्वयं भगवान भी गोपियों के प्रेम के सामने ये हो जाते थे। अरे गोपियों और राधा रानी का प्रेम को समझने के लिए स्वयं भगवान के संसार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। क्या है, श्री राधा या प्रणमयिमा कीदृशवा नैवा स्वाद्या जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय सौखान जैसे मदनुभव भवत कीदृशं वेति लोभास तथभावाढ्य समनिसचिग गर्भ सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। तो ये राधा रानी का प्रेम को समझने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण सची माता के पुत्र के रूप में संसार में प्रकट हुए। श्री राधा या प्रणय महिमा, ये राधा रानी का जो माधुर्य प्रेम है वो किस प्रकार का थी, वही प्रेम को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण सची माता के पुत्र के रूप में संसार में प्रकट हुए। स्वाद्या उसको चखने के लिए, उनका स्वाद कैसे है, वो प्रेम का मिठास किस प्रकार का है, जो इतना ये लोग इतना प्रेम करें, ये लोग का प्रेम को जानने के लिए स्वयं भगवान वही अपने प्रेम का रस को, अपने प्रेम का रस को जानने के लिए आस्वादन करने के लिए स्वाद जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय, सची माता के पुत्र के रूप में वो नदिया में प्रकट हो गया। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी आज यहाँ पर बता रहे हैं गोपीनाम परम आनंद। गोपी लोग जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लेते थे, गोविंद का दर्शन जब गोपियों को होती थी, गोपियां बहुत खुश हो जाती थी, बहुत प्रसन्न होती थी। गोपीनाम परम आनंद, उससे बढ़कर के आनंद और सुख नहीं, ये सत्य बात है। भगवान को दर्शन करने की जो आनंद है, उससे उसके सामने संसार के आनंद क्या है, तुच्छ है। भगवान का भक्ति का आनंद, भगवान की सेवा की आनंद, भगवान के दर्शन की आनंद, ये संसार की वस्तु नहीं है, ये अद्भुत है। भगवान की प्रेम है, प्रेम भगवान को जो भक्त जो लोग प्रेम करते हैं, अब भगवान को प्रेम करने से वो भक्तों को जिस प्रकार का सुख मिलती है, वो सुख का कोई सीमा नहीं है, कि सुख का कोई तुलना नहीं है, कि सुख का कोई पहचान नहीं है। भगवान के प्रेम की सुख उसको पहचान नहीं कर सकते, ये इतना ये ऐसे हैं कि ये प्रेम इतना है कि उनका आनंद वहां तक है, वो अनलिमिटेड है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं के आनंदम बुद्धिवर्धनम ये आनंदम हर क्षण बढ़ते जाता है, उनका कोई सीमा नहीं, वो बढ़ते जाता है, वो घटता नहीं है। भगवान का भक्ति का जो आनंद है वो बढ़ते ही जाता है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी यही बात को कह रहे हैं, गोपीनाम परम आनंद। कब गोपियों को परम आनंद होती थी, ना जब आसित गोविंद दर्शने, गोविंद का दर्शन जब होती थी गोपियों को, तो बहुत सुखी हो जाती थी। भक्तों का एक गुण है, भक्तों की सुख कहाँ पे, ना भगवान के चरण में, भगवान के चरण कमल का जब दर्शन होती है भगवान के भक्तों को, तो उससे उससे बढ़कर के सुख भक्तों में नहीं है, इसलिए ये संसार के जो तथाकथित सुख है, सुख तो नहीं है, सुख तो नहीं है, लेकिन तथाकथित मान लेने वाले जो सुख है ये भक्तों के सामने क्या है, कैसे हैं? हाँ, ऐसे कचड़े के जैसे हैं। तो ये है भक्तों की प्रसन्नता की एक कारण है। भक्तों की सुख का जो जड़ है वो भगवान के प्रति जो भक्ति है, वो ही उनका सुख है। और सुख यही है, संसार में सारे वस्तुओं को छोड़कर जब भगवान के शरण में चले जाते हैं तब जीवात्मा सुखी बन जाता है। जीव तभी सुखी होता है जब भगवान के भक्ति में वो निवेश करता है, प्रवेश करता है। हाँ, तब जाके उनको आनंद प्राप्त होती है। जीव का स्वरूप लक्षण है सुख आनंद, लेकिन वो चीज उसको कब प्राप्त होता है? तो दासत्व को स्वीकार करता है जीव जब भगवान का दासत्व को स्वीकार करता है, भगवान का सेवा को स्वीकार करता है, तब जाके जीव सुखी होता है। तो हाँ, श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कि गोपियों को तब प्रसन्नता होती जब वो भगवान का दर्शन होते हैं उनको। भगवान जब उनका दर्शन देते हैं तो गोपियों सुखी हो जाते हैं, लेकिन वही गोपियों को बहुत बड़ा दुख होती। कब? एक क्षण जब भगवान का दर्शन गोपियों को नहीं होती है तो ये एक क्षण गोपियों के लिए कैसे बन जाती है? न युग सतम, एक क्षण युग सतम, सौ युगों के बराबर है। एक क्षण भगवान का दर्शन जब भक्तों को नहीं होते हैं, हाँ, तो जो भक्त लोग ऐसे रस में गए हैं, जो ऐसे रस उनको जिनको प्राप्त हुआ है, हाँ, तो वो ऐसे अनुभव। और श्री सुखदेव गोस्वामी एक मुक्त जीव है, श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता है, तो जानते हैं ये गोपियों का किस प्रकार का रस है, गोपी रस। हाँ, श्रील सुखदेव गोस्वामी एक मुक्तात्मा होने के नाते वो जानते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। हाँ, तो गोपियों को एक क्षण जब गोविंद का दर्शन नहीं होती थी तो गोपियों के लिए एक क्षण कितने होती थी? न सौ योगों के बराबर। किस क्या चीज के बिना? कृष्ण के बिना गोपियों को इस प्रकार का प्रतीयमान होती थी। हाँ, तो ये चीज। हाँ, तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी और एक बात बताते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में दिन के समय अपने मित्रों के साथ गोएं लेकर भगवान आए दुनिया में, क्या कर रहे थे? उनका धंधा क्या थी? उनका व्यवसाय समझ रहे हैं? व्यवसाय, उनका जो काम क्या थी? ना गाय का देखभाल करना, और बलराम का काम था खेती काम करना। भगवान जब ये संसार में आते हैं, ये देखो इस प्रकार का कर्म करते हैं, जब बद्ध जीव का अहंकार टूट जाए। भगवान जब ये संसार में आते हैं, झूठे पत्ता भी उठाने के लिए नहीं हिचकते नहीं है। तो अपने छोटे छोटे कार्य के द्वारा भगवान ये दिखाते हैं, जब हम छोटे बनेंगे, जब छोटे कार्य करने के लिए उत्सुकता दिखाएंगे, तब जाके हमें बड़े चीज को प्राप्त करेंगे। लेकिन भौतिक संसार में, भौतिक अवस्था में, बद्ध अवस्था में कोई छोटे कार्य करना पसंद नहीं करते, लेकिन भगवान यही किए। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में भगवान सारे जो आकर के प्रसाद लेते, झूठे पत्ता उठाए। जो सारे संसार के ईश्वर है वो जब संसार में आते हैं तो ऐसे कार्य करके बद्ध जीव का जो अभिमान है वो अभिमान के ऊपर एक चोट लगाते हैं। तो भगवान दिन के समय वृंदावन में अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल चले जाते थे। हाँ, गोए लेकर के जंगल चले जाते थे। और जब भगवान जंगल चले जाते थे तो गोपियों तो और उनके मित्र के साथ नहीं जा पाते थे, लेकिन गोपियों का मन भगवान के साथ जाती थी। गोपियां शरीर में नहीं जा पाती, लेकिन मन उनका गोविंद के साथ चली जाती थी। इसीलिए गोपियां अपने घर द्वार में रहते हुए कृष्ण की चिंता में इतने मग्न रहते हैं। हाँ, इतने मग्न रहती थी गोपियां, तो घर की काम काज भी वो ठीक से नहीं कर पाती थी। इसीलिए भगवान ने गोपियों को कहा, हे गोपियों, तुम लोगों का प्रेम मेरे प्रति ऐसे है, ब्रह्मा का आयु भी मुझे प्राप्त हो जाए, ब्रह्मा का आयु प्राप्त होने के बाद भी आप लोगों का प्रेम को प्रेम का ऋण को चुकाने के लिए मेरे पास ऐसे कोई वस्तु नहीं है, आपके प्रेम का प्रतिदान देने के लिए ऐसे मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, भले देवताओं का आयुष मुझे प्राप्त हो जाए हाँ आप लोगों का सेवा करके, हाँ फिर भी आपका ऋण आप लोगों का प्रेम का कर्जा मैं चुका नहीं पाऊंगा, स्वयं भगवान ये बात को कह रहे हैं। हाँ, और इस प्रकार भगवान दावाग्नि से अपने ग्वाल मित्रों को बचाने के बाद तो गांव की ओर चले। दावाग्नि जो लग गई थी अपने मित्रों को बचाए, हाँ फिर वो दावाग्नि से बचाने के बाद एक गोपियां जो विरह की अग्नि में जल रही थी, यहाँ पर अपने मित्र जो दावाग्नि में जल रहे थे, तो वो दावाग्नि से बचाने के बाद गोविंद ने क्या किया, अभी गोपियां जो मेरे विरह की अग्नि में ये विरह की अग्नि है और ये अग्नि इस प्रकार का होती है, सारे प्रकार का पाप को जला डालता है। जब भक्त कृष्ण की विरह का भक्त के हृदय में कृष्ण का विरह रूपी अग्नि प्रकटित होती है तो उनके हृदय में जो अनादि समयों से जो पड़ी हुई जो अनावश्यक चीज है हाँ वो तुरंत विरह अग्नि के द्वारा जल करके भस्म हो जाती है। तो गोविंद ने वही सोचे, अभी ये गोपियां जो मेरे विरह अग्नि में जल रही है तड़प रही है तो अभी मुझे उनको दर्शन देना है, तो ये सोच करके वो चले। कहाँ चले, कब चले, ना साय अयम, हाँ यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि साय अहने, सॉरी साय अहने, कब चले गोविंद, ना जब सूर्य पूर्व दिशा से पश्चिमी को ढल जाते हैं तब भगवान जंगल से अपने गौ को लेकर के चल पड़ते हैं। हाँ, जब दोपहर बीत जाती है, दोपहर जब बीत जाती है, सूर्य पूर्व दिशा से पश्चिमी को आ जाते हैं तब भगवान अपने मित्रों के साथ हाँ गांव को चल देते हैं। हाँ, और जब चल रहे थे किसके साथ चल रहे थे, ना सहराम जनार्दन, चल तो रह रहे थे लेकिन किसके साथ, वो बलराम के साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जीवात्मा कभी अकेले आनंद नहीं ले सकता, इसमें भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं, भगवान अकेले अकेले वो खुशी नहीं हो पाए, इसीलिए हाँ बलराम जी को प्रकट किए, राधा रानी को प्रकट किए, ये सब भगवान का आह्लादिनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, ये अंतरंगा शक्ति का एक काम है भगवान को आनंद प्रदान करना, इसीलिए जो लोग निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए प्रयास करते हैं तो लोग सुखी नहीं हो पाते, वास्तव सुखी भक्त होते हैं, क्योंकि अकेला आनंद नहीं लिया जा सकता, आनंद दोनों जब दो व्यक्ति होते हैं तब आनंद ले सकते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अकेले आनंद नहीं ले पाए, इसलिए हमेशा बलराम के साथ रहते हैं, हमेशा अपने ग्वाल मित्रों के साथ रहते हैं, सहराम जनार्दन, हाँ जनार्दन किसके साथ रहते हैं, ना सहराम बलराम के साथ हमेशा रहते हैं। और क्या कर रहे थे, बेणुंग बीरणयन हाँ, और बांसुरी बजाते हुए गोष्ठम आगत गोपे अभिश्रुत, हाँ कैसे चल रहे थे, ना बांसुरी बजाते हुए और गोष्ठम आगत, गोष्ठम गांव के और गोष्ठम आगत गोपे अपने मित्रों के गोप बालकों के साथ अभिश्रुत, हाँ उनके मित्र लोग जो है प्रशंसा कर रहे थे, हाँ तो ऐसे ऐसे आग से बचा लिया दावाग्नि से, तो गोप बालक उनका प्रशंसा कर रहे थे, इसी प्रकार भगवान अपने मित्रों के साथ चल रहे थे, जा रहे थे गांव की ओर, ब्रज की ओर। हाँ, तो ये दृश्य उस समय का जो दृश्य है बड़े ही अद्भुत थी, बड़े ही एक अतुलनीय थे, मतलब चमत्कार थी, ये सुंदर दृश्य को ब्रह्मा जी बताते हैं कि वेणु कणंत मरविंद दलायत यक्षं बहावतां समसिताबंध सुंदरांगं कंदर्प कोटि कमनी अभिशेष शोभम, हे प्रभु इसीलिए मैं आपका भजन करता हूँ, आपका वेणु कणंत, आप बांसुरी बजाते हुए जब चलते हो, वेणु कणंतम बजाते हुए जब चलते हो, और क्या वेणु कणंतम अरविंद दलायत आख्यम, उस समय आपका सौंदर्य कैसे है? अरबिंद दल, अरबिंद कमल फूल का एक नाम है अरबिंद। हाँ, अरबिंद दल आयत अक्षम, आपका जो अक्षम, अक्षम मतलब जो आपकी जो आंखें हैं वो कैसे हैं? ना कमल फूल के खिलती हुई पंखुड़ियों के जैसे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु आप उस समय जब आ रहे थे आपका ये सौंदर्य किस प्रकार का थी? ना कमल फूल के, कमल फूलों के पंखुड़ियों के खिलते जैसे, आपके आंखें का सौंदर्य इस प्रकार का थी। बहावतान समसीता, और आपका जो शीर का सौंदर्य को और बढ़ा कौन रहा था? ना मोरपंख। भगवान हमेशा मोरपंख धारण करते हैं, हाथ में बांसुरी लेते हैं। बहावतम, आपका शीर का सौंदर्य हाँ क्या थी? ना मोरपंख। अवसितम जिनके मस्तक का श्रृंगार, असित अम्बुदम सुंदर अंगम। और आपका शरीर का कांति किस प्रकार का थी? ना नीलमणि के जैसे। असित अम्बुद सुंदर अंगम, सुंदर अंगम, अंग मतलब आपके शरीर का कांति नीलमणि के जैसे थी। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कंदर्प करोड़ों कंदर्प का जो रूप है, जो कांति है, एक कंदर्प का जो सौंदर्य है वो सारा संसार को मोहित करके रखा है। ये सारा संसार का जो सौंदर्य है, हर व्यक्ति कुछ सौंदर्य के पीछे भाग रहे हैं। ये सौंदर्य क्या है? ना कंदर्प का, कंदर्प जो रतिदेव का जो पति है तो वो है कंदर्प। एक कंदर्प का रूप सौंदर्य ये सारा भौतिक जगत के प्राणियों को आकर्षित करके रखा है। प्रत्येक मनुष्य कोई ना कोई सौंदर्य में आकर्षित मोहित है ना, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी जोनी में ले लो, हर व्यक्ति एक सुंदर वस्तु को देखना चाहता है, पसंद करता है। हर व्यक्ति सुंदर वस्तुओं के पीछे भागता है। तो ये सुंदर वस्तु है क्या? ये सुंदर वस्तु है कंदर्प। हाँ, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं एक कंदर्प का जो कांति है ये सारा भौतिक जगत को मोहित करके रखा है। लेकिन प्रभु आपका जो सौंदर्य है करोड़ों कंदर्प का रूप है, करोड़ों कंदर्प का सौंदर्य है। आपका जो सौंदर्य करोड़ों कंदर्प का सौंदर्य है। तो ऐसे सुंदर पुरुष का मैं भजन करता हूँ। और श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर और एक विशेष बात बता रहे हैं कि भगवान का जो बांसुरी वादन है, बांसुरी का जो ध्वनि है, एक अद्भुत ढंग से बजाते हैं। भगवान जो बांसुरी फूंकते हैं, बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं, तो बांसुरी का जो आवाज है ये एक अद्भुत है। भगवान वृंदावन के भीतर जो बांसुरी बजाते हैं वो बांसुरी का ध्वनि जब गोपियां सुनती है वो अपने को और संभाल नहीं पाती है। कैसे कपड़ा पहनी है, अपने पति के साथ है कि घर के काम कर रहे हैं कि बच्चे हैं कि और कोई कहीं पर है। तो सब जैसे भगवान की बांसुरी गोपियों को सुनाई पड़ती है तुरंत वो सारे कार्यों को छोड़कर गोविंद भगवान की ओर दौड़ जाते हैं। खाली गोपियां नहीं, भगवान के बांसुरी का ध्वनि जो है ये जगत के प्रत्येक प्राणी को मोहित करके रखा है। देवताओं के पत्नियां जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का ध्वनि को सुनते हैं वो विचलित हो देते हैं, वो शुद्ध बुद्धि खो देती है। अपने पतियों के साथ होते हुए भी वो बड़े ही ऐसे हो जाते हैं जो होना नहीं चाहिए। देवताओं की पत्नी का ये स्थिति है जब वो भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं। और वृंदावन के भीतर जो गौवें हैं, ये गौवें जब भगवान के बांसुरी की ध्वनि को सुनते हैं वो तो एकदम मुग्ध हो जाती है और अपने चौड़ा चौड़ा कान को फैला करके वो ऐसे ऐसे करके देखती है। वृंदावन के गौवें भगवान के बांसुरी सुन करके ऐसे अपने कान को फैला करके वो ऐसे खड़े रहती है जैसे वो अमृत पी रही है कान के द्वारा। और जो उनके बछड़े हैं अपने माँ के जो दूध है अपने मुंह में दबाए ऐसे ही रह जाता है। जो बछड़े हैं अपने माँ को दूध मुंह में लेते हैं लेकिन ऐसे ही रह जाते हैं। और दूध पी नहीं पाती है। हाँ, और ऐसे बांसुरी के ध्वनि को सुन करके बछड़े लोग, हाँ, जैसे कि उनको लगता है कि वो भगवान को आलिंगन कर रहे हैं, और वो बछड़े की आंखों से अश्रु बहती है। वास्तविक आंखों का सिद्धि यही है, जब भगवान कृष्ण बलराम को जंगल में जाते हुए देखेंगे, हाँ, बांसुरी बजाते हुए देखेंगे कि अपने ग्वालों मित्रों के साथ, हाँ, गौ के साथ इस प्रकार भगवान एक वृंदावन का दृश्य को, जिनको जो भक्तों ने अपने आंखों में देखते हैं, तो ऐसे भक्तों को एक प्रकार का सिद्धि प्राप्त हो चुका है। वृंदावन का भगवान का गौ के साथ बांसुरी बजाते हुए अपने मित्रों के साथ इस प्रकार का वृंदावन का दृश्य को जो भक्त देख लिया अपने अंतकरण में, अपने ध्यान में, हाँ, अपने जीवन में, तो वास्तविक सिद्धि को वही लोगों ही प्राप्त किए हैं। हाँ, प्रभुपाद जी भी ये बात बताते हैं, समाधि अवस्था को वो लोग चले गए जो भक्त लोग इस प्रकार का दृश्य को दर्शन कर रहे हैं, उनको ही वास्तविक समाधि प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर भगवद गीता के अनुसार ये जो गोपियां हैं वो सर्वोच्च योगी के रूप में माना गए हैं, क्योंकि वो नित्य निरंतर गोविंद के लीला में डूबे हुए हैं। और जो व्यक्ति निरंतर गोविंद का लीला को स्मरण कर रहे, भगवान का लीला में मग्न है, वही वास्तविक योगी है। भगवद गीता में यही कहा गया है, सततम योगी नाम, जो सतत, हाँ, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो उससे बढ़कर के योगी और कौन हो सकता है। जिनका मन में हमेशा 24 घंटा भगवान है, तो वो ही योगी है, भले वो कहीं रहे ना क्यों। हाँ, तो इस प्रकार गोपियों की स्थिति थी भगवान का बांसुरी ध्वनि सुन करके। हाँ, तो और एक दूसरी बात यहाँ पर कहा गया, तात्पर्य आज के श्लोकों के तात्पर्य में, तो ये गोपियाँ और राधा रानी थी, ये सबसे उच्च कोटि के भक्त थी, उससे बढ़कर के बहुत बड़ा भक्त इस संसार में और कोई नहीं है। गोपियों से बढ़कर के और कोई भक्त नहीं है। तो जब वृंदावन में कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए अक्रूर जी आए थे, अरे गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतने पागल बन चुकी थी, जब अक्रूर जी आए थे गोपियों से कृष्ण बलराम को अलग करके ले जाने के लिए, तो वहां पर गोपियां अक्रूर जी को कहे थे कि अक्रूर जी, आप इतने निर्दय नहीं हो सकते, क्योंकि ये कृष्ण जो हमारा प्राण है, वास्तविक कृष्ण ही सब गोपियों का क्या, सारे जीवों का कृष्ण ही प्राण है। यदि भगवान हृदय छोड़ के चले जाए, हमें सब है, मुर्दार है। वास्तविक हर जीव का प्राण जो है कृष्ण है, और गोपियां यही बात कह रहे हैं, अक्रूर जी, ये कृष्ण हमारा प्राण है, यदि आप ये कृष्ण बलराम को वृंदावन से ले चले जाओगे, तो हमें मारे जाएंगे, हमें जीवित नहीं रह पाएंगे, तो आप इसलिए आप इतने निर्दय हमारे प्रति नहीं हो सकते हैं, क्यों, आप एक भक्त हो। और अक्रूर गोपियों का ये बातें सुनने के बाद भी, जब कृष्ण बलराम को गोपियों से अलग कर दिए, तो उनको सांप लग गया, अब बहुत बड़ा पाप कर लिए आगे जाके अक्रूर जी पाप करेंगे, क्योंकि भक्त जो होता है वो कभी भी पाप नहीं कर सकता, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो अक्रूर जी यहाँ पर एक शुद्ध भक्त है, लेकिन गोपियों का सांप से आगे जाकर पाप करेंगे, एक मर्डर केस, एक हत्या केस में संपृक्त हो जाएंगे। ये ब्रजवासियों का जो सांप है अक्रूर को लगा था भगवान को उनसे अलग कर देने के कारण। तो गोपियां यहाँ वो समय गोपियों का इस प्रकार का स्थिति बन चुकी थी, हाँ, जैसे एक प्राणी का अंत समय आने के समय जिस प्रकार स्थिति होती है, जैसे एक प्राणी का अंत समय आती है, तो वो जीव का जैसे स्थिति होती है, उस प्रकार का अवस्था गोपियों का हो गई थी। ये इतने दुखी हो गई थी कृष्ण बलराम के बिना, इतने एक प्रकार पागल हो गई थी, और वो बार बार ब्रह्मा के उद्देश्य में कह रही थी कि आपके योजना से कृष्ण हमें मिले, और कृष्ण के साथ हमारा जब इतने गहन प्रेम हो गया, क्योंकि हम बचपन से कृष्ण के बीच छोड़कर और कुछ जानते ही नहीं है, कृष्ण का मुस्कान, उसका चलना, उनका बैठना, उनका बात करना, उनका हर चीज हमको इतने मुग्ध कर चुकी है, हाँ, तो हमें उनके बिना रह नहीं सकते। तो आप ये बात जब बन गई कृष्ण के साथ और अक्रूर के रूप में आप आकर के हाँ उनको ले जाने के लिए हाँ सोच रहे हो, आप इतने क्रूर हो, गोपी यहाँ ब्रह्मा जी को कह रहे आप इतने क्रूर हो, हाँ आपके द्वारा कृष्ण हमें मिले, लेकिन जैसे उनके साथ प्रेम हो गया आप अक्रूर के रूप में वृंदावन पहुंच गए। और वो तो पागल अवस्था में एक व्यक्ति क्या कहेगा, जब अपने एक व्यक्ति से अपने प्रिय वस्तु को छीन लिया जाए वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, नहीं तो आत्महत्या करेगा, मर जाएगा। बहुत एक वस्तु को एक व्यक्ति को आप बहुत प्रेम कर रहे हो, उसके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसे प्रेम कर रहे हो, और ऐसे प्रिय वस्तु को यदि आपसे छीन लिया जाए तो क्या होगा। तो गोपी यही कह रहे हैं, हे देवता लोग, ये ब्रह्मा जी नहीं सुन रहे हैं हमारे बात, हे देवता लोग तुम तो सुन लो, ऐसे कुछ कर लो, चक्रवात कर लो कि तूफान ला दो कि धान झांझी बहने लगे कि बहुत बड़ा बारिश होने लगे, कृष्ण न जा पाए, ऐसे कुछ कर लो। लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो गोपियाँ ने आखिर में ये नहीं रही कि कुछ ये लोग कोई हमारा साथ नहीं दे रहे, हमको कुछ करना पड़ेगा। तो सारा गोपियाँ सोचने लगे हम स्वयं जाकर के कृष्ण को रोकेंगे, और चले भी गए और अक्रूर जी के रथ के सामने खड़े हो गए। हर गोपियाँ भी यही सोच रही ये कृष्ण बलराम भी ऐसे हैं जाके रथ में बैठ गए हैं, और हमारे जो पिता माता वो भी जाके छकड़े में ये भी बैलगाड़ी में बैठ गए, ये लोग कोई हमारा मदद नहीं करेंगे, हमें स्वयं जाएंगे। और जाकर के अक्रूर जी के रथ के सामने कोई गोपी खड़े हो गए, कोई रथ के चके को पकड़ करके खड़े हो गए, हाँ कोई भगवान श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ करके खड़े हो गए, उनको जाने नहीं दे रहे थे। उस समय गोपियों का जो प्रेम है वो कौन कह सकता है, स्वयं भगवान भी गोपियों के प्रेम में प्रभावित हो गए। लेकिन क्या करें, उनको ये संसार में आए थे, उनको कुछ कर्तव्य निभाना था, तो वो क्या करें। तो जाने जब लगे तो विशाखा ने साफ दे दिए भगवान श्री कृष्ण को, आप जा रहे हो ना, देख रहे हो ना ये राधा रानी को, आपके बिना कैसे हो गई है, तो आप तो जा रहे हो, लेकिन आज इस प्रकार राधा रानी रो रही है, आपको भी एक दिन ऐसे ही रोना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे मंजूर है, आपका साप मंजूर है, मैं क्या करूं, संसार का भार को निभाने मिटाने के लिए मैं ये धरती पर प्रकट हुआ हूँ, कर्तव्य के लिए मुझे कुछ भी हाँ चीज को ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ, आपका साप स्वीकार है। अरे भगवान उस साप के कारण हाँ चैतन्य के रूप में संसार में प्रकट होकर के ज्यादा से ज्यादा समय भगवान रोए, चैतन्य के रूप में भगवान जब संसार में आए थे ज्यादा अधिक समय रोए थे। ये विशाखा का अभिशाप थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और भगवान चले गए, और चले जाने के बाद राधा रानी कैसे एकदम वो गिर गई और उड़ नहीं रही थी, बस श्वास भर चल रही थी राधा रानी का कृष्ण के बिना, और इतने वो पागल बन गई थी। हाँ अपने मित्रों को कह रही थी कि गोपियाँ हाँ मित्र हाँ आप लोग मुझे यमुना के किनारे ले जाओ, और वहाँ पर हाँ यमुना के कुछ मिट्टी हाँ ला करके मेरे सारा शरीर में लेप दे दो, हाँ और वो मिट्टी के ऊपर श्याम नाम लिख दो, यमुना का मिट्टी ले आओ और मेरे सारा शरीर में लेप कर दो, और मिट्टी के ऊपर लिख दो श्याम नाम, और श्याम नाम के ऊपर तुलसी मंजरिया रख दो, और तुलसी मंजरिया रखने के बाद मेरे चारों तरफ आप लोग घेर करके बैठ जाओ, जब मेरा प्राण निकल जाएगी तुम हरी 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 बोलना। ये एक पागलपन का लक्षण है। हाँ जब व्यक्ति इस प्रकार का जो मानसिक भारसाम्य साम्य को खो देता है तो उनका वो स्थिति में नहीं होता है, तो कुछ भी बकवास कर कुछ भी कहेगा कुछ भी बोलेगा। तो राधा रानी ऐसे अवस्था में पहुंच गई। ये पागलपन अच्छा है, भौतिक संसार के जो पागलपन है वो पागलपन से हाँ भक्त लोगों का जो पागलपन है वो अच्छा है, और वही सही पागलपन है। भगवान के पीछे पागल होना ये सच्चा पागलपन है, लेकिन ये भौतिक संसार के जो पागलपन है ये और तो जन्म मृत्यु को और हाँ बढ़ाने वाली है। और गोपियाँ ना राधा रानी ऐसे हो गई थी, हाँ फिर अचानक उनका आंख ऊपर की ओर गई, ऊपर देखे राधा रानी एक कौआ उड़ के जा रही है और कौवा को बुला रही है, कौवा को बुला रही है और कौवा को कह रही है कि कौवा हाँ तू जा रहा है ना मथुरा की ओर, वहाँ पे श्री कृष्ण है, उनको एक खबर दे देना, मेरे तरफ से एक खबर ले जाओ उनको देना कि यदि कोई घर में आग लग जाए तो वो गृहस्वामी का पहला कर्तव्य होता है वो घर के भीतर जो गृहपालित पशु है वो पशुओं को पहले मुक्त कर दें। जब कोई घर में आग लग जाती है घर मालिक कर्ता का प्रथम काम है वो घर के भीतर गृहपालित पशु जो रहते हैं उनको पहले छुड़ा दें। और ये मेरा जो शरीर रूपक घर है वो शरीर रूपक घर में आग लग गई है और ये शरीर रूपक घर के भीतर मेरा प्राण पशु निकल नहीं पा रही है। क्यों नहीं निकल नहीं पा रही है ना, बहुत बड़ा अर्गल लगी हुई है। और ये अर्गल क्या है, राधा रानी कह रही है ये अर्गल क्या क्या है ना, कृष्ण जब गए जा रहे थे वो बोल के गए थे मैं थोड़े समय के बाद लौट के आऊंगा। ये अर्गल क्या है, कृष्ण कहे थे कि मैं थोड़े समय के बाद लौट करके आऊंगा। अब यही कहना कृष्ण आकर के ये अर्गल को निकाले, ये अर्गल को खोल दे। हाँ तो इसी प्रकार राधा रानी का स्थिति हो गई थी और गोपियां भी इस प्रकार का पागल हो गई थी। वो जंगल में ऐसे इधर उधर घूमती थी, कोई पत्थर को देखती थी तो हाँ पत्थर को पूछती थी कि कृष्ण यहाँ पर आपके यहाँ बैठते थे क्या, कि कोई वृक्ष को देखते थे तो हाँ तो कृष्ण यहाँ पर कितने सारे लीलाएं किए थे। वो समय वृंदावन में नहीं थे कृष्ण, लेकिन गोपियां इस प्रकार का घूमती हुई इस प्रकार कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो स्मरण कर रही थी, यहाँ पर कृष्ण बैठे थे, यहाँ पर कृष्ण ऐसे ऐसे लीला किए थे, हाँ यहाँ पर हमारे साथ हास परिहास किए थे, उनका मुस्कान ऐसे थी, हाँ ये हिरण के साथ बात कर रहे थे, हाँ ये फूल तोड़ के हाँ हमारे गला में पहने हुए थे, सारे भगवान के साथ जो हुआ था गोपियों का लीला वो हाँ भगवान के विच्छेद से इस प्रकार का स्मरण कर रही है। वो सारे चीज को उद्धव थोड़ी सी दूर खड़े होकर के देख रहे थे और उद्धव यही बात सोच रहे थे हाँ मेरा ब्रजभूमि आना सफल हो गया, ये गोपियों का चरण चरण कमल का जो धूल है वो धूल को मैं वंदना करता हूँ। गोपियां ना उद्धव कितने बड़े भक्त हैं, वो जब ब्रज आए थे हाँ गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो अनुराग है हाँ वो देख करके वो कह रहे थे ये गोपियों का चरण कमल का जो धूल है वो धूल का मैं वंदन करता हूँ। और ये गोपियों का चरण कमल का धूल यदि मुझे मिल जाए मेरा मैं सर में लगा लूं मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, स्वयं उद्धव ये बात को कह रहे हैं। और गोपियां जब देखती कि उद्धव जी आए हैं और दौड़ के आती है और उद्धव जी को पूछते हैं हाँ आप आए मथुरा से आए, आपका मित्र यहाँ वो नहीं आ पाए, आपको भेज दिए और आप आए हो यहाँ पे, हमारा क्या कसूर थी, हमारा क्या हम क्या गलती किए थे, भगवान को जो हमें प्रेम किए थे ये प्रेम में कोई हमारा प्रेम में कोई काम भाव नहीं था, ये संसार में जो प्रेम होती है उसमें काम होती है हाँ, लेकिन गोपियों का जो प्रेम है ये एकदम विशुद्ध है। लेकिन संसार के जो धूर्त लोग हैं हाँ अपने धूर्तता से गोपियों का ये विशुद्ध प्रेम को कलंकित करना चाहते हैं, लेकिन सोना सोना है, सोना भले गट्टर में जाके गिरे वो सोना ही बना रहेगा, तो गोपियों का जो भगवान का जो प्रेम है ये सोना के भांति चिकचिक करती है, इसमें कोई प्रकार का लेस मात्र भी हाँ सांसारिक काम वासना नहीं है, एकदम विशुद्ध है। यही बात गोपियां कह रही है उद्धव क्या गलती थी हम लोगों का, हम भगवान को जो प्रेम कृष्ण को जो प्रेम कर रहे थे वो प्रेम में हमारा क्या गलती थी ना, वो प्रेम में और कोई दूसरा इच्छा रख हमारा थी, कोई दूसरा इच्छा रख करके हमें कृष्ण को प्रेम नहीं कर रहे थे, कि हमें कृष्ण को जो प्रेम कर रहे थे वो प्रेम प्रेम के बदले में हमें कुछ चाह भी रहे थे, हम प्रेम के बदले में कुछ चाह नहीं रहे थे तो फिर हम कुछ छोड़ के क्यों चले गए। उद्धव जी को और उद्धव जी क्या जवाब देंगे, उद्धव जी को पूछ रहे हैं और उद्धव जी क्या जवाब दे रहे हैं देंगे हाँ। तो यहाँ पर ये नरोत्तम दास ठाकुर एक बात बताते हैं, जय 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 राधा नाम वृंदावन जार धाम कृष्ण सुख बिलासर निधि, हेनो राधा गुणगान ना सुनिलो मोरो कान वंचित करिलो मरे विधि। जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम कृष्ण सुख बिलासर निधि, कृष्ण का सुख का जो निधि है वो क्या है? राधा नाम। कृष्ण सुख का वस्तु क्या है? राधा नाम। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं राधा, रा मतलब जो व्यक्ति रा कहता है, मैं उसके प्रति उसके ऊपर इतने प्रसन्न हो जाता हूँ, इतने प्रसन्न हो जाता हूँ, फिर वो जब धा उच्चारण करता है मैं उसके पीछे पागल का मापी दौड़ता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर राधा नाम का इस प्रकार का महिमा बताते हैं। आप वृंदावन गए हो ना, जब वृंदावन जाते हो वृंदावन में हर किसी के मुंह में राधा नाम होती है। पेड़ में देखो जय श्री राधे, दीवाल में देखो जय श्री राधे। हाँ, कि कोई कुछ किसी को बुलाता है हे राधे, कि आप सड़क में चलते हो राधे राधे महाराज ऐसे बोलते हैं। हम जब जाते हैं तो राधे राधे महाराज ऐसे बोलते हैं। हाँ, दुकान में जाओगे कुछ खरीदोगे राधे राधे कितना भाव है, क्या भाव है, हर बात में वृंदावन में एक प्रवृत्ति है, हर कार्य में हर बातों में हर राधा नाम को जोड़ के बोलते हैं। हाँ, राधा रानी है क्या, राधे है क्या, एक भगवान श्री कृष्ण के कृपा मूर्ति है। राधा जो है ये भगवान श्री कृष्ण के कृपा का मूर्ति है। भगवान अपने कृपा को एक मूर्ति के रूप में बना दिए। ये राधा जो है ये भगवान श्री कृष्ण के कृपा विग्रह है। जिस प्रकार कलियुग में भगवान श्री कृष्ण के कृपा गंगा के रूप में बह रही है, भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है ये गंगा है, ये द्रवीभूत भगवान श्री कृष्ण की कृपा, ये द्रवीभूत गंगा जो है भगवान श्री कृष्ण की द्रवीभूत स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार ये राधा जो है ये भगवान श्री कृष्ण की द्रवीभूत कृपा स्वरूप है। राधा कुंड, राधा कुंड जो है ये भगवान श्री कृष्ण की द्रवीभूत स्वरूप है। तो कृपा को कहाँ लेना चाहिए? सर में। गंगा जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा है ये गंगा को उठा करके सर में लेना चाहिए। जो वैष्णव में जो श्रेष्ठ शिव जी, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा द्रवीभूत कृपा स्वरूप कहाँ रखे? अपने जटा में। इसीलिए हम जो भी जाते हैं गंगा के पास तो कृपा को उठा करके, कृपा कहाँ लिया जाता है? मस्तक में, सर में। तो ये गंगा को उठा करके मस्तक में धारण करना चाहिए। उसी प्रकार जब राधा कुंड में जाते हैं तो राधा कुंड का जो कृपा है, राधा ये जो जल है वो उठा करके कहाँ रखना चाहिए? अपने सर में। तो ये राधा रानी का विशेष महिमा है। हाँ, तुलसीदास जी जब वृंदावन के भीतर आए हैं तो आश्चर्य हो गए, अरे ये यहाँ पर क्या है, सब कोई राधा राधे बोल, राधे राधे बोल रहे हैं, भगवान श्री राम के धाम में तो सबके मुंह में राम नाम होता है, और कोई सीता बोल, कोई अकेले सीता नहीं, और सीता बोलते हैं तो सीताराम बोलते हैं, कोई अकेले सीता नहीं बोलता है, सीता बोलना है तो सीताराम बोलते हैं अयोध्या में भगवान राम के धाम में, लेकिन यहाँ पर और कोई राधे राधे बोलते हैं, तो ये क्या है? तो एक महान व्यक्ति ये बात को कहते हैं, ये सारा पृथ्वी के भीतर यहाँ ये है वृंदावन धाम का विशेषत्व। यहाँ पर कोई किसी को तिरस्कार भी करना है पहले मधुर बात सुनाओ पीछे उनको कुछ बोलो। हाँ, किसी को आप गाली भी देना है कुछ तिरस्कार भी करना है पहले राधे बोलो फिर बाद में जो कुछ बोलो। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के प्रेम में पागल हो गए थे। खाली गोपियां राधा रानी जो कृष्ण के लिए पागल हो गए थे ये बात नहीं है, भगवान भी भक्त भी, भक्त जब भगवान के लिए पागल होते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए भी पागल हो जाते हैं। तो ये खाली जो गोपियां पागल हो गई थी कृष्ण के लिए ये बात नहीं है, भगवान भी गोपियों और राधा रानी के पीछे भी, प्रेम के पीछे भी पागल हो गए थे। यही बात को, ये बात तो मेरे हमारे जैसे भक्तों के भक्त राधा रानी का गोपियों का प्रेम को कह नहीं सकता, लेकिन श्रील सुखदेव के, सुखदेव गोस्वामी के अनुगत होते हुए जो भी थोड़ी सी शब्द आया, तो गोपियों का जो प्रेम किस प्रकार का थी, ये राधा रानी का प्रेम किस प्रकार का थी, हाँ गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं, आई एम अपनिंग ईयर वन क्राइंग स्कूल, आप लोग आइए यहाँ पे रोइए। राधा रानी जी जिस प्रकार रोई थी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, मैं एक इस्कन रूपी एक ब्रांच खुला हूँ, गौर गोविंद स्वामी महाराज बताए थे, ये भुवनेश्वर में मैं एक यहाँ पर इस्कन खुला हूँ, आप आइए रोइए कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार हमारे आंखों में यदि इस प्रकार थोड़ी सी एक बूंद अश्रु आए कृष्ण के बिना, कृष्ण के लिए, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा श्री कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।